जी बिस्मिल्लाह करें। जी फरमाइए जी।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप ही पहला सवाल फरमाइए। जी
मेरा सवाल कुछ नहीं है, ज्यादातर जो जहन में सवाल आता है नहीं, जो करती बहन है उनसे मुतमिन हो जाता, तो कुछ नहीं है।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी
मैं सवाल कर रही हूँ।
इरशाद।
ये कि बरसों के तजुर्बात में ये बात पाया सबूत को पहुंचा दी कि लहरें जो मादा को कंट्रोल करती हैं उन्हीं की बुनियाद पर मादा का क़याम है। आप जरा ये मुझे मादा के बारे में जरा तफसील से बताएंगे कि ये मादा किस बेस के ऊपर काम करता है, क्या इसके हिसाब किताब है, और अभी आज का इंसान इस नुकते पर है कि जहाँ वो मादे को महसूस करने के बाद लहरों पर दस्तरत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको जरा मुझे समझा दें थोड़ा।
अर्ज ये है कि ये लफ्ज मादा जो है, अब इसके देखे ना कितने मीनिंग हैं। एक तरफ ये लफ्ज मादा जो है किसी भी लफ्ज की रूट को कहा जाता है, हाँ या नहीं?
सही बात।
अरबी में अल्फाज का मादा होता है, यानी उनकी एक रूट होती है, रूट वर्ड होता है। ठीक हो गया?
ठीक हो गया।
अब इसी तरह दूसरा मतलब है कि नर और मादा, यानी एक मेल और एक फीमेल, ये फीमेल को मादा कहते हैं। अब तीसरा लफ्ज मादा जो है वो मैटर को कहते हैं, अंग्रेजी में एक लफ्ज है मैटर, यानी मादी अशिया। ये जो आप कोई भी चीज देखें, ये फर्श जो है, ये हमारा जिस कमरे में आप बैठे हैं इसका फर्श, इसकी कुर्सी, इसकी मेज, इसका बिस्तर, इसकी टेबल, टेबल पे पड़ी हर चीज, ये सब क्या है? मादी अशिया है। आप किचन में जाते हैं, वहां पे आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब मादी चीजें हैं। ठीक हो गया?
ठीक हो गया।
अब इन सारी मादी चीजों का इन्हिसार जो है वो किस चीज पे है? वो है रोशनी, वो है रंग। अब ये हर चीज रंगों से बनी है इसलिए नजर आ रही है, अगर इनके रंग गायब कर दिए जाएं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं।
सही है।
अब अगर ये रंग हो, मादा भी हो, लेकिन रोशनी ना हो, अब कमरे में टोटली अंधेरा घुप हो जाए, तो हर चीज होते हुए भी नजर में तो नहीं आएगी। अब आप गौर करें कि क्या मैंने तीन दर्जे बता दिए आपको। एक तो मादा इस सूरत में है कि वो ठोस है, दूसरा वो रंगों से बना हुआ है और अपने रंगों की वजह से महसूस होता है, तीसरा ये कि इन रंगों को, इसके ठोसपन को कौन सी चीज हमें महसूस करवा रही है, तो वो रोशनी है। अब रोशनी की बुनियाद क्या है? रोशनी की बुनियाद गैर मरई रोशनी है। मरई कहते हैं नजर आने वाली चीज को। अब देखे ना, कम आपको हवा नजर नहीं आ रही लेकिन महसूस हो रही है,
महसूस हो रही है।
अब ये मादे की शक्ल है, हवा भी मादी चीज है, लेकिन क्योंकि वो इतनी डेलिकेट है, इतनी क्या कहेंगे, नाजुक है, इतनी लताफत है उसमें कि हमें दिखती नहीं है आंखों से, लेकिन पंखा चले तो उसकी हवा जिस्म को लगती भी है, महसूस भी होती है, और उसके ना होने से दम भी घुटता है। तो ये मादी सारी अशिया का दारोमदार है रंगों पे, और रंगों का दारोमदार है रोशनी पे। रोशनी क्या है? रोशनी लहर है। रोशनी क्या है? लहर। अब ये सारा निजाम किस चीज पे हुआ? लहरों पे हुआ। अब ख्याल की भी लहर है, आवाज की भी लहर है, पानी पे भी लहरें काम करती हैं। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये रेडियाई लहरें हैं, रेडियो लहरें, रेडियो की लहरें हैं। यानी वो लहरें जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन देखें इस्तेमाल हो रही हैं। न सिर्फ ये कि वो इस्तेमाल हो रही हैं, बल्कि उनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे मजे से। अब आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, ये बाकी हमारे सारे दो पार्टिसिपेंट्स जो हैं, ये कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, और एक बंदे की आवाज उनके घरों में अलहदा अलहदा पहुंच रही है। हालांकि आवाज तो एक ही है, एक ही बंदा बोल रहा है ना। अब आप बोल रही हैं तो मैं भी सुन रहा हूँ और बाकी सारे 10 बंदे भी सुन रहे हैं, हाँ या नहीं? तो ये सारा निजाम लहरों पे है। अब कुछ लहरें जिनको हम मादी तौर पे देखते हैं, कुछ लहरें जिनको हम मादी तौर पे नहीं देखते। अब उनमें से जो सबसे अच्छे दर्जे की लहर है उसका नाम है ख्याल, उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है। ये रेडियाई लहरों की रफ्तार देखें कि मैं इधर बात कर रहा हूं और साथ ही वो उसी लम्हे आपके कान में पहुंच रही है, दरमियान में कोई पॉज ही नहीं है। आप बोलते हैं, आप सुन के उसका जवाब देते हैं, उसी लम्हे वो बात मेरे कान तक पहुंचती है। यानी ये हजारों मील का फासला हजफ हो गया, किस वजह से? लहरों की रफ्तार की वजह से। तो यहां से हम ये कहते हैं कि मकानियत, यानी मादे में क्या चीज होती है? मकानियत। अब ये जो मादा है, मतलब मेज है, तो वो 2.5 फुट चौड़ी है, 4 फुट लंबी है, तो ये लंबाई चौड़ाई वो 2.5 फुट जमीन से ऊंची है, ये सारी चीजें लंबाई चौड़ाई, ये जो लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सब चीजें क्या हैं? उसकी डायमेंशंस हैं, मादियत की डायमेंशंस हैं या स्पेस है, इसको कहते हैं स्पेस। अब हम चूंकि शौरी तौर पे सिर्फ मादी चीजों की हद तक रहते हैं, रूहानियत हमें ये मतवज्जो कर रही है कि मादी चीजों की, इस मादे की असास क्या है, इस मादे की बुनियाद क्या है। तो मादे की बुनियाद रंग हैं, रंग भी लहरें हैं, फिर ऊपर उसके रोशनी हैं, वो भी लहरें हैं, रोशनी से ऊपर की लहरें जो हैं वो रेडियाई लहरों से लेकर मैंने कहा ख्याल की लहरें। अब देखें ना, जिस बंदे को ख्याल आया कि मोबाइल बनाऊं, पहले याद होगा आपको लोग वो एक ही तार के जरिए तार वाला फोन इस्तेमाल करते थे, फिर वो कॉर्डलेस हो गया, यानी उसके तार के बगैर, घर के अंदर ही वो तार के बगैर इस्तेमाल करते थे, फिर ये वायरलेस हो गया, फिर ये वायरलेस से मोबाइल हो गया। अब आप चलते फिरते जहां मर्जी चले जाएं, मोबाइल आपके हाथ में है, आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया से जिससे चाहे बात करें। तो ये सारा निजाम, मादे का निजाम जो है, आपके मोबाइल का निजाम सारा लहरों पे है। अगर नेट बंद हो जाए तो आप कहते हैं ओ जी मेरे सिग्नल नहीं आ रहे, यानी लहरें नहीं आ रही, तो पूरा मोबाइल आपके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा बन के रह गया, बेजान चीज बन गया ना। एटम जी, ये जब आप देखें, अब किसी भी चीज पे गौर व फिक्र करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप बाहर से उसके अंदर घुसें, क्या कहा, एक ये कि हम किसी चीज को देखें और उसके अंदर घुसते चले जाएं। दूसरा ये कि हम पहले उसके इनर से वाकिफ हों और फिर उसको बाहर महसूस करें। अब ये जो एक तरीका है, ये है साइंसदानों का तरीका। साइंसदान क्या करते हैं, वो चीज को देखते हैं, उसको खोलते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और अंदर घुसते जाते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। अब अंबिया कराम का तरीका ये है कि वो कहते हैं नहीं, पहले अल्लाह से वाकिफ हो जाओ जो सारी चीजों का खालिक है, फिर वो चीज का ख्याल जो है वो आपको वाजे हो जाएगा, फिर आपको चीज समझ आ जाएगी। वो कहते हैं अंदर से बाहर को आओ।
अच्छा।
क्या, एक कहता खारिज से बातिन में जाओ, एक कहता बातिन से खारिज। बातिन को मान लो तो खारिज खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अंबिया कराम क्या कहते हैं, पहले बातिन को मानो। अब ये लफ्ज एटम को समझ लें। जब इंसानी शऊर ने सोचना शुरू किया कि ये मादा क्या चीज है, तो उसने देखा कि मादा छोटे छोटे जर्रात से बना हुआ है। उन्होंने उन जर्रात का नाम, यानी कि हर चीज का एक जर्रा है जहां पे आके वो खालस हालत में दस्तयाब है। मसलन अब पानी है, तो पानी के कतरे को आपने कहा ये वाटर मॉलिक्यूल है। पानी का कतरा अपनी आखिरी हद में मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन जब उन्होंने मजीद देखा तो उसके अंदर, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें थी, क्या, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो उन्होंने कहा कि भई ये ऑक्सीजन का एटम अब मॉलिक्यूल्स का टुकड़ा जो है वो क्या कहलाया, एटम। यानी उन्होंने कहा कि मादे की ऐसी हालत जिसको ना तोड़ा जा सके, ए यानी नहीं, टम टुकड़ा तोड़ना। तो एटम कहते हैं मादे की वो आखिरी इंतहा जिसपे उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन साइंसदानों ने जब उसे भी तोड़ा तो वो एटम बम बन गया। आपने समझ के क्या करना है, इतना समझ लीजिए कि एटम यानी इन्होंने पहले इंसान एक चीज को कहता है ये नहीं टूट सकती, फिर उसने उसे भी तोड़ दिया। जब उसे तोड़ा तो पता चला कि एटम के अंदर पूरा एक जहान आबाद है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है। जब वो उसके और अंदर उतरे तो पता चला इसके अंदर क्वार्क्स भी हैं, सब पार्टिकल्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, क्वांटम हैं। तो ये क्वांटा कहते हैं उसे, ठीक है, उसकी जमा। अब कहने का मतलब ये कि इंसान का सफर जारी है, वो मादे के अंदर घुस रहा है, ये समझ रहा है कि भाई आखिर में मादा एनर्जी है। अब क्या कह रहा है, आज का साइंसदान कहता है मादे के अंदर एनर्जी है। जब वो उस एनर्जी को रिलीज करता है तो धमाका भी होता है, आवाज भी आती है, शोर भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक हो गया ना? जी। अब चूंकि हर चीज, अब अल्लाह ने कहा कि हर चीज एनर्जी से बनी है, अब साइंसदानों ने जब उस एनर्जी का सुराग लगाया तो उस एनर्जी को, अब ये एटमी रिएक्टर में क्या होता है, उसमें यूरेनियम को, उसकी शुआओं को, यूरेनियम की एनर्जी को वो चैनलाइज करके बिजली बना देते हैं। ठीक हो गया? अब उसी एनर्जी को वो एकदम धमाके से फाड़ते हैं तो तबाही मच जाती है। तो ये सारी बात वाजे हो गई। धात है जी, हाँ यूरेनियम है। फिर कहने का मतलब ये है तो मादा ही ना जी, अब ये हैवी मेटल्स में आता है। तो ये देखें, जब आदमी किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं तो हम उसको एक नॉलेज की ब्रांच कहते हैं। केमिस्ट्री नॉलेज की एक ब्रांच है, फिजिक्स नॉलेज की एक ब्रांच है। तो ये जो नॉलेज है, मैंने आपसे अर्थ किया कि ये मादी जोन में जो नॉलेज है वो बाहर से अंदर की तरफ का सफर है। अब वो आखिर कहाँ पहुंचे, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि एटम जो है ये एनर्जी के पैकेट्स से बने। अब अगर अगले मरहले पे जब वो ये सोचेंगे, ये आज का दौर में जो स्टीफन हॉकिंग टाइप के फिलोसफर्स हैं वो ये मान रहे हैं कि हम यूनिफाइड थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आखिर में उन्होंने कहना है कि पूरे कायनाती निजाम को एक ही ताकत कंट्रोल कर रही है। इसी बात को अंबिया कराम शुरू से बता रहे हैं कि भी कायनात में उस ताकत का खालिक है, वो ताकत खुद कुछ नहीं है। देखें अंबिया कराम की तर्ज फिक्र क्या है कि खालिक है, खालिक ने ताकत पैदा की, उस ताकत एनर्जी से आगे चीजें बनी। अब उन्होंने उस ताकत का नाम रूह रखा। साइंसदान उस ताकत तक तो पहुंच रहे हैं, मान रहे हैं कि मादे के अंदर ताकत है, लेकिन अभी उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो ताकत है क्या, वो ताकत कितनी बाशऊर है। उस ताकत को पता है कि मैंने पानी बनना है, मैंने आग बनना है, मैंने बर्फ बनना है। गौर करें, ये शऊर उस ताकत को किसने दिया? तो अंबिया कराम की तर्ज फिक्र ये है कि पहले आप खालिक को तस्लीम करें, तो फिर उसकी बनी हुई अता करदा बनाई हुई ताकत को, ताकत का खालिक कौन है? अल्लाह। और वो ताकत चूंकि अल्लाह की तख्लीक है, लिहाजा वो अल्लाह का मानती है। अल्लाह ने उसको ये शऊर दिया है कि तुमने किस किस रंग में, किस किस रूप में, किस किस तरह क्या क्या काम करने। इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो इस ताकत को समझे और इसे काम ले। अब ये सारी बात वाजे हो गई। जी अब साइंसदान कहता है कि ये सारी कायनात एटम से बनी है, ठीक है, और रूहानी बंदा क्या कहता है, कुरान क्या कहता है कि इस एटम को किसने बनाया? हाँ, अब ये जो बात है, जब हम साइंसदान के अंदाजे फिक्र को, अब इस वक्त पूरी दुनिया का मसला क्या है कि वो टैली नहीं कर पा रहे कि क्या मसला है। वो कहते हैं साइंसदान की माने के अल्लाह वालों की माने, इधर चूंकि दोनों ही नीम हकीम है लिहाजा वो खतरा जान बने हुए हैं, ना उनको बात पूरी पता है ना इनको बात पूरी पता है। लिहाजा भाई मैंने आपसे अर्ज किया कि कुरान को पकड़े, कुरान में पूरी बात है। कुरान बता रहा है कि खालिक है, खालिक का इरादा जो है वो इरादा हरकत में आया तो चीजें बनी, चीजों में सबसे पहले रूहें बनी, रूहों से मुराद एनर्जी बनी। अब कितना आसान हो गया।
और ये
बात यह है कि आप अपनी इस महदूद सी दुनिया में कह दें, आप अपनी दुनिया से बाहर की हर चीज को क्या कहते हैं? एलियन। एलियन का क्या मतलब है? अजनबी। एलियन कहते हैं अजनबी को, जिसको मैं नहीं जानता। आप देखिए ना, एलियन है यानी कि भाई ये मेरे लिए नामानूस है, मैं इसे वाकिफ नहीं हूं। अब हो सकता है, देखिए ना एक बात को, जब आप खुद मान रहे हैं कि अजनबी हूं, ये बात हकीकत है कि जिन्नात आपसे कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। अब आप उनको एलियन कहते हैं, ठीक है, आप उनको, अपना शऊर अभी आपका इतना डेवलप नहीं हुआ कि आप एलियन से वाकिफ हो सकें। जब आप वाकिफ हो जाएंगे तो आप उसको मार्शियन कहेंगे कि ये मार्स से आई हुई मखलूक है, या ये ल्यूनेटिक्स हैं यानी चांद से आई हुई मखलूक है। मिसाल, अभी चूंकि आपके पास कोई उनको पहचानने का जरिया नहीं है, लिहाजा हमने उनका नाम एलियन रख दिया। अब देखे ना, यूएफओ, क्या आपने लफ्ज बोला? अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। वो उड़ता है, उड़ने वाली चीज, लेकिन अनआइडेंटिफाइड, क्या लफ्ज बोला आपने? कि आप उसे शनाख्त नहीं कर पाए। अब आप एक चीज को शनाख्त ही नहीं कर पाए तो आप उससे मुतालक जहन में जो मर्जी तस्वीरें बनाते रहें। ये बात तो हकीकत है कि कायनात में सिर्फ आप और मैं ही मखलूक नहीं है, अल्लाह की मखलूकात का तो शुमार ही कोई नहीं। तो ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई दीगर मखलूकात जो हैं वो मौजूद हैं। अब आप उन्हें अपने जाविया नजर से, अपने महदूद अंदाज से, आप क्या कह रहे हैं? एलियन। एलियन का मतलब अजनबी, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, नाम रख दिया यूएफओ। ओ भाई जरा मतलब पे गौर तो करो, आप साफ मान तो रहे हो कि भाई हमने इसको शनाख्त नहीं किया, हम शनाख्त नहीं कर सकते, हमारी सकत ही नहीं है, हमारा जहन ही नहीं है। वाजे हो गई बात? किसका?
ब्लैक होल।
आपने क्या करना है उसका? अर्थ ये है, अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन जो कुछ इन्होंने बताया उसकी रोशनी में ये कहते हैं कि मादा, देखे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के गिर्द घूम रहा है। अब उसका फासला कितना है? जितना के फर्ज करे कि जमीन के गिर्द चांद घूम रहा है, कितना फासला है? जमीन के साइज से तो कई गुना ज्यादा है ना। इसी तरह जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो जमीन का और सूरज का कितना फासला है? लोग कहते हैं 9 करोड़ मील, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि अगर किसी वजह से ये जमीन सूरज में गिर जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अंदर उसके साथ जा चिपके, इलेक्ट्रॉन अपने मदार को छोड़ के प्रोटॉन के अंदर गिर जाए, क्या होगा? वो दरमियानी फासला खत्म हो जाएगा। तो जब तक अल्लाह किसी को उसके मदार पे चला रहा है, वो पूरा निजाम कायम है, ठीक है। अब जब वो चीजें केव इन कर जाती हैं, क्या लफ्ज बोला अंग्रेजी में? केव इन कर जाना यानी गार के अंदर, गार का अंदर बैठ जाना, एकदम अंदर को बैठ गया। जब सारा निजाम कोलैप्स हो जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन में जज्ब होना, यहाँ से खेल शुरू होता है और फिर क्या होता है, वो हर चीज वापस अपने मरकज की तरफ गिर रही होती है। उससे जो चीज बनती है उसको ब्लैक होल कहते हैं। आप उनको छोड़ देना जी, वो कहते हैं, उनके अंदाजे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थ्योरी इन्होंने पेश की है कि जब मादा अपने अंदर गिरना शुरू हो जाए तो वो ब्लैक होल बन जाता है। जैसे अब आपका ये सारा निजाम शमसी, एक वक्त आएगा कि ये जो जमीन, सूरज, चांद और सितारे हैं, ये एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। पहले ये एक थे, अल्लाह ने कुरान में साफ बताया ये एक थे, ये ठा करके बाहर को निकले और सारे अपने अपने मदारों में घूमने लगे, कायनात वजूद में आ गई। अब जब कायनात का कोई जुज कोलैप्स करता है, केविन कर जाता है, तो उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ये भी कुदरत के फिनोमिनन में से एक फिनोमिना है। जी हाँ, यही तो अल्लाह कह रहा है कि जहाँ हैरत है वहीं अल्लाह है। अल्लाह का लुगवी मतलब क्या है? हैरान कर देने वाला। चले, बहुत शुक्रिया जी,
आपका मेरी काफी टाइम दिया।
जी और कोई सवाल?
मैं पूछना चाह रही हूँ।
जी जी, इरशाद।
तस्करा कलंदर बाबा औलिया, पेज नंबर 101। इंसान की जाती मसलहतें अपने लिए नूर की शुआओं को महदूद कर लेती हैं। ये महदूद शुआएं अपना जाती अमल तर्क नहीं कर सकती, वो तो जारी रहता है। अब इंसान एक बातल तसव्वुर जो इसने शुआओं से वाबस्ता कर लिया है, गलत उम्मीदें बन जाता है। यही नाकामी है, यही इंसानी मुसीबत है। तो इसने जाती मसलहतें, क्या ये मेरी समझ में नहीं आई?
बड़ा सिंपल है जी, हम जितना जानते हैं हम उन्हीं की हदों में सोचते हैं, हाँ या नहीं? देखे ना, अभी बात हो रही थी यूएफओ की। अब साइंसदानों ने अपनी आजिजी का इजहार कर तो दिया, क्या कहा? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा। अब हमने इसको उड़न तश्तरी का नाम दे दिया, हमने इसको उड़न खटोला कह दिया। ये सारे किस्से क्या हुए? जाती, यानी जो मेरा जाती इल्म है वो मेरी मसलहतें। अब देखें, आप अपने घर में देखें कि कोई भी काम आप करते हैं तो आप ये देखते हैं इसमें मेरा क्या फायदा है। कुरान आपको बार बार लालच देता है कि भाई अगर ये काम करोगे तुम्हारा ये भला होगा। हम अपने भले के चक्कर में अल्लाह को जानना चाहते हैं, ये तो हाल है। इसको जाती मसलहत कहते हैं। ये आपने तस्करा कलंदर बाबा औलिया में मकतूबे ग्रामी में से पढ़ा। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने फिक्रे इंसानी की सबसे बड़ी कज्जी, यानी टेढ़ापन, उसकी तरफ इशारा किया है कि ये जब तक जाती मसलहतें आड़े आती हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं। एक साहब मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि ये जो बच्चे लंगड़े, लूले या अंधा या बहरा पैदा होता है, तो इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? अब एक सवाल है, अब मैंने अर्ज किया कि ये उनके अम्मा का चूंकि शऊर मजबूत नहीं था, तवाना नहीं था, लिहाजा वो तखलीक में सुकम रह गया। अब उन्होंने मेरी बात सुने बगैर कहा कि जी ये तो अल्लाह का निजाम इंसाफ गलत है, उसमें बच्चे का क्या कसूर है। मैंने उनसे कहा कि बच्चे को तो पता ही नहीं कि समात होती क्या है या बसारत होती क्या है, वो तो इस चीज से उसको तो महरूमी का पता ही नहीं है। सजा तो असल में उस अम्मा को है, उस माँ को है जिसने अंधा बच्चा पैदा किया है। देखे ना, असल सदमा माँ बाप को है या बच्चे को है? असल मतलब सजा किसको मिल रही है? अब मेरी बात पे वो मुझसे नाराज हो गए कि तुम इंतहाई जालिम इंसान हो। उनका ये जुमला मुझे कभी कभी बहुत याद आता है। मैं इसमें क्या जुल्म किया मैंने? भाई अल्लाह का निजाम है, बच्चे पैदा होते हैं ना ऐसे जिनमें कमी होती है या खामी होती है, तो क्या अल्लाह खामी ज्यादा बच्चे पैदा करता है? अल्लाह के निजाम में तो कोई खामी नहीं है। तो जहां इंसान का कसूर है, मैं जाती मसलहतों के तहत अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद लगा के बैठा हूं कि नहीं अल्लाह ये कभी गलत नहीं करते। बेशक अल्लाह नहीं गलत करता, लेकिन अल्लाह का निजाम है कि अगर आप गलत करेंगे तो गलत नतीजे निकलेंगे। अब आप कहें कि अल्लाह अपने नतीजे गलत जो है उनको क्यों नहीं रोक देता, तो ये अल्लाह के निजाम अदल पे खिलाफ नहीं हो गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी मसलहतों के तहत एक बात सोच रहा हूं। कुछ बात वाजे हुई? देखे ना, मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ भला हो। जब पता ही नहीं है तो देखें, आपने तो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का नाम ही आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड रख दिया, आपको अपने शऊर का पता क्या है? आप उसे ठीक तो तब करेंगे ना जब पता होगा। जब पता ही नहीं है, देखो ना, सारा खेल तो जहालत का है। अब अगर किसी को कहो कि भी आप अपनी जहालत दूर करो, वो आगे से जूता उतार के मारता है। वो कहता है तू होता कौन है मुझे जाहिल कहने वाला।
मैंने ये चीज पढ़ी है कि स्ट्रैगली जो है ना, ये अपने जो न्यू बॉर्न होने वाले बच्चे होते हैं उसको भी बड़ा केयरफुल होते हैं।
जी हाँ, कम अज कम उन्हें देखे ना, इतना शऊर तो है। हमारे मुआशरे में क्या है, इधर बच्ची की शादी हुई, उधर उसने कंसीव किया, उधर कहीं सास उस पर चढ़ी हुई है, कहीं उसकी नंदे चढ़ी हुई है, कहीं उसके देवर, कहीं जेठ, कहीं भाभियां, अजीब खिचड़ी बना देते हैं उसकी बच्ची के जहन का, बाजा बजा देते हैं। अब आपसे वो जेनी तौर पे इसीलिए तो तबाना है, लिहाजा वो हुकूमत कर रहे हैं। अब देखे ना, हमारे यहाँ माँ इसलिए बच्चे जनती है कि सास ने बुरा मनाना है अगर बेटा ना पैदा हुआ है, अगर बच्चा ना हुआ तो मेरी जान को आ जाएंगे ये। वहां पे वो इसलिए बच्चा पैदा करते हैं, ये उनकी तरबियत ये है कि भाई तुमने एक ऐसा बच्चा पैदा करना है जो लोगों पे हुकूमत करे। बात समझ आ गई? अब हमने अपने बच्चों को क्या शऊर दिया? हमने बच्चे को ये शऊर दिया कि सास से भी डरना है, खावन से भी डरना है, अपने बच्चों से भी डरना है। तो खौफ की फिजा में जो चीज उगेगी वो कितना उसका जहन होगा, वो जेनी माजूर और पसमांदा लोग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम खौफ से आजाद नहीं है। خوف کی وجہ سے ساری چیزیں کرمبل کر جاتی ہیں، کیبن کر جاتی ہیں. دیکھیں نا، خوف میں بندہ ایسے اپنے اندر سمٹا رہتا ہے، کوئی بندہ کھل کے سوچنے پہ راضی نہیں ہے. اب اللہ والے کیا کہتے ہیں، بھئی اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ لامحدود ہے. آپ کی سوچیں لامحدودیت تک پھیلیں گی تو اللہ سمجھ آئے گا نا. آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی محدود باتوں کو میں سمجھوں. ہاں ضرور سمجھیں، اس کے سمجھے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی پہلے تو آپ خود کو جانیں. اب خود کو جاننے میں آپ کو خود اپنا بنایا ہوا نظام تو سمجھ آئے، پھر جا کے کہیں آپ اللہ کو سمجھیں گے اور اللہ کے نظام کو سمجھیں گے. چار باتیں ہوئیں، ایک آپ ہوئے، ایک آپ کا بنایا ہوا نظام ہوا، یعنی انسان اور انسان کا بنایا ہوا نظام، ایک ہوا اللہ اور ایک ہوا اللہ کا نظام. اب آپ کو نہ اللہ کے نظام کا پتہ ہے نہ اپنے نظام کا پتہ ہے، آپ چلیں ڈائریکٹ اللہ کی گود میں، اللہ کو جفا ڈال لیں. نہیں بھائی، پہلے آپ کو خود کو سمجھنا ہے. من عرف نفسہ فقد، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا، فقد، صرف وہ جو خود کو جان لے گا وہ عرف ربہ، اپنے رب کو جان سکے گا. جی وعلیکم السلام.
سر یہ حضرت قندوہ اولیاء کا فرمانے کی ذات انسانی یا انا، اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا، یہی معرفت الہیہ کا پہلا قدم ہے. اگر انا اپنے رب کو اس سے جدا سمجھے تو معرفت الہیہ سے محروم ہے. سر یہ ذرا سمجھا دیں.
جی انا کسے کہتے ہیں اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ ذات. جی دیکھیں نا، اصل میں ہم کیا ہیں، ہم ذات ہیں. ذات کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے. کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، پھر اس ذات کی ایک تجلی ہے. وہ تجلی کا ہم اور میں اور آپ ایک ایک نقطہ ہے. جب یہ نقطہ سمجھے گا کہ میں کیا ہوں تو کیا ہوگا، وہ محسوس کرے گا کہ میں کس کی ذات کا حصہ ہوں. تو یہ ذات انسانی جو ہے، یہ اصل میں اللہ کی ذات کا، یہ جو ہے نا نفخت فی ہے مر روحی، اب یہ مر روحی لکھنے میں کیا لکھا ہوا ہے، من میم نون، میم زیر نون کے اوپر جزم ہے، تو پڑھنے میں مر روحی پڑھتے ہیں، لکھنے میں منر روحی لکھا ہوا ہے. پڑھنے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مر روحی. یعنی غور کریں کہ ہم نے کیا کیا کہ یہ اللہ نے اپنی روح پھونکی. اگر اللہ نے اپنی روح پھونکی تو ہم کیا ہوئے؟ ہم اللہ ہوئے. نہیں، اللہ نے کہا من، اب لکھنے میں من من لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نون کے اوپر جزم ہے، من من روحی، میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، ٹھیک ہے. مکتوبی شکل کو دیکھیں تو من روحی، लेकिन पढ़ने में मिन मिर्रू ही पढ़ते हैं। वो एक साहब ने ये बात फरमाई, मुझे तवज्जो दिलाई कि जी इस तरह आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा जी असल मफहूम मेरे जहन में ये होता है। तो अर्ज ये है कि ये मिनर रूही, ठीक है, अल्लाह ने कहा मैंने अपनी रूह में से फूंका, अपनी रूह नहीं फूंकी, अपनी रूह में से क्या फूंका, वो सलाहियतें, फिर उन सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने इल्मुल अस्मा सिखाया। किसको सिखाया? उस जात को। अब अगर ये जात का कयाम किस पे हुआ? जात का कयाम तजल्लिए जात पे हुआ या ना हुआ? भाई जात क्या है? तजल्लिए जात का एक नुक्ता है। तो आप एक जिस चीज का नुक्ता है, आपका ताल्लुक किससे है? क्यों जी?
ठीक है
भाई, देखे ना, आप एक बड़ी चीज का हिस्सा हैं। आप समुंदर के पानी का में से एक गिलास लें, तो वो पानी जो है वो असल में क्या है? वो समुंदर का हिस्सा है। अब उस पानी के अंदर समुंदर की सारी खासियतें प्रॉपर्टीज हैं या नहीं, सिवाय वुसअत और गहराई के? ठीक हो गया।
लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि मैं ही सबसे बड़ा गैर अल्लाह है, जब तक मैं हम सब नहीं।
ये जो लफ्ज है ना, ये अब सूफियों ने बीच में, देखिए बात ये है, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसे तवज्जो से समझे। आप अल्लाह नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर अल्लाह की अता करदा सलाहियतें काम कर रही हैं, और आपको काम लेने का तरीका अल्लाह ने इल्मुल अस्मा अता करके आपको बख्श दिया। अब अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो असल में क्या हुआ कि शैतान ने पर मारा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। तो मैं जो है ये सबसे बड़ा गैर अल्लाह है। और भाई गैर अल्लाह कैसे है? मैं उसका हिस्सा है। मैंने हजूर मुर्शिद करीम से पूछा कि जी मैं कैसे खत्म करूं? इसी तरह के विचार से गुजरा हूं ना, तभी मैं आपकी बात का जवाब देने के है। अर्ज यह, मैंने मुर्शिद करीम से पूछा जी मैं कैसे खत्म करूं? मेरे भी जहन में यही बातें थी कि ये गैर अल्लाह है और ये सब तमाशा है, इसे खत्म करना है। तो जब मैंने हजूर से फरमाया, तो अब्बा ने मुझसे पूछा मैं कैसे खत्म हो सकती है, ऐसे डांट के ना, मैं कैसे खत्म हो सकती है? जाहिर अब मैं चकरा गया क्योंकि वो बना हुआ जहन है जी। तो हजूर ने मुझसे कहा भी खाना आपने खाया, आप ये थोड़ी कहेंगे कि खाना शाइन ने खाया, शाइन मेरी वाइफ का नाम है। मैंने कहा जी हाँ मैंने ही खाया। कहने लगे सांस कौन ले रहा है? आप कहेंगे मैं ले रहा हूं। तो ये मैं ही तो सब कुछ कर रही है। इस मैं ही की ड्यूटी है कि वो खुद को भी जाने, और इस मैं ही की ड्यूटी है कि वो अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब, अपने परवरदिगार को भी पहचाने। अब अगर आप कहें जी मैं गैर अल्लाह, बिल्कुल गैर अल्लाह ही, अल्लाह थोड़ी है, ये तो मखलूक है। और इस चीज का एहसास करना क्या कि मैं मखलूक हूं और मेरा कोई खालिक है। अब बताइए इसमें मैं का इस्तेमाल आ गया कि नहीं आ गया? यह एहसास किसने करना है कि मैं मखलूक हूं? क्यों जी? अरे मैं हटा दूं तो मखलूक कौन हुआ? तौबा नाउज़ु बिल्ला, अल्लाह तो मखलूक नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? क्यों जी? कोई गल पले पई के नहीं? यानी देखे ना, अगर हम एक जात हैं और ये जात का एक खालिक है, और जात का काम है कि वो खुद को भी जाने और अपने मालिक, अपने परवरदिगार, अपने खालिक को भी जाने, तो बताइए मैं जरूरी हुई या नहीं हुई? लेकिन मैं का अब अगला जुमला जो अब्बा ने फरमाया वो भी सुन लें। हजूर मुर्शिदे करीम ने फरमाया, हाँ अनानियत नहीं होनी चाहिए। ये जो अनानियत है ना कि मैं हूं, यानी जब आप अपने अलावा दूसरी चीजों को, खास तौर पे अपने रब, अपने मालिक, अपने खालिक को कैंसिल कर देते हैं, तो ये अनानियत कहलाती है। वो गलत है। अब वाजे हो गई बात पूरी तरह, ठीक है ना जी? काफी हो गया
जी सर, लाइट चली गई थी।
कोई बात तो नहीं
सर, मैं बाद में सुन
ली। जी जी, मैंने
टाइम पॉइंट में सर आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया, वरना हम तो मैं को खत्म करने के
सानू पुठे पासे लाया था शैतान ने। भाई देख, अब वो मैं को खत्म कर देंगे तो जाहिर है कि बात सब बिगड़ जाएगी। नहीं, मैं से आपने वो काम लेना है। हजूर मुर्शिदे करीम ने फरमाया अनानियत नहीं होनी चाहिए, यानी मैं हूं का एहसास नहीं होना चाहिए। मैं हूं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मैं रहूं। अल्लाह ने मुझे वजूद बख्शा है ताकि मैं उसको समझूं, उसके निजाम को समझूं। अब मैं काम से लग गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी मैं का ही मालिश करता रहूं, जो मैं जानता हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो ये अनानियत कहलाएगी। जब आप खालिक की निगेशन कर देते हैं तो ये मैं जो है ये अनानियत कहलाती है। इस मैं को खत्म करना, यानी इस एंगल ऑफ थॉट को खत्म करना। अब वाजे हो गई बात? चलें, बहुत शुक्रिया आपका। काफी है या और कुछ, कोई है सवाल?
अगर टाइम है सर तो पूछूं सवाल।
इरशाद जी, इरशाद।
टाइम भी कम रह गया।
कोई बात नहीं, आप बात करें जी।
जी हम हमेशा चार सिमतों की बात करते हैं, किस चार सिमतें हैं? कहीं ये भी पढ़ा है कि छह सिमतें हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब ऊपर नीचे, लेकिन जबकि बाकी किताब में लिखा है कोई सिमत है ही नहीं।
इसका जवाब मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जब हम बाहर देखते हैं तो हमें तीन सिमतें दिखती हैं, क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये जब हम खारिज में देखते हैं, जब हम अपने जहन में चीजें सोचते हैं तो हम चार सिमतों का तस्करा करते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है? ये हमारा शौरी फहम है। जब हम अपने इनर में उतर जाते हैं तो इनर में जब हम किसी भी हवाले से सोचते हैं तो हमारे जहन में छह डायमेंशंस होती हैं, क्योंकि हर चीज असल में सिक्स डायमेंशनल है। हर चीज दायां भी रखती है, बायां भी रखती है, आगा भी रखती है, पीछा भी रखती है, ऊपर भी रखती है, नीचे भी रखती है। हाँ या नहीं? अब जब आप अपने इनर में उतर गए तो इनर में ही अल्लाह है, इनर में ही लोहे महफूज है, तो बताइए सिमतें कहाँ हुई? इनर में आप अपने जब नुक्ता जात तक उतर गए तो सिमतें कहाँ हुई? सिमतें तो मफरूजा हैं, ये महसूसात का दर्ज है। अब क्लियर हो गया? देखे ना, वहमा है, ख्याल है, तसव्वुर है, एहसास है। अब ख्याल में جب آپ پہنچ گئے تو احساسات کی حد تک تو سمتے ہیں، تصور میں کوئی سمت، اس میں ڈائمینشنز ہیں، لیکن خیال میں کون سی ڈائمینشنز ہیں، پھر وہمے میں کون سی اطلاعات ہیں، اطلاعات میں کون سی ڈائمینشنز ہیں، تو وہاں پہ کوئی سمت نہیں ہے. اب کلیئر ہو گیا؟ چلو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ. جی
اللہ حافظ،
اللہ حافظ، اللہ حافظ.